ربنا فيك أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي ناظرات. جیسے کہ پہلے کئی مرتبہ ذکر ہو چکا کہ انسانی جسم میں 9 لطائف رکھے گئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ ذکر جس کا ہوتا ہے وہ 2 لطائف ہیں، قلب اور نفس، اور دونوں ہی انسان کے سینے میں لیفٹ اینڈ رائٹ پر موجود ہیں. ایگزیکٹ لوکیشن ان کی قلب ہے اور یہ نفس ہے. قلب کے بارے میں لاسٹ سنڈے آپ سے عرض کر رہا تھا، اور قلب کی پوری مملکت کا بھی ذکر کیا. اسی طرح جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نفس کی 3 معروف حالتیں آ جاتی ہیں. نفس کی 3 بڑی معروف کیفیات ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ہم اس ترتیب سے بولتے ہیں، لیکن روحانیت میں جہاں اس کا کتابوں میں ذکر ملے گا، اس کی ترتیب اس کے الٹ ہوتی ہے. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ. ہم اس ترتیب میں اس لیے بولتے ہیں کہ جس طرح سے کوئی انسان جس کی گرومنگ نہ ہوئی ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، اس کو عام طور پہ ہم کندہ ناتراش کہہ دیتے ہیں. تو نفس امارہ سے ابتدا ہے، اس کے نفس لوامہ تک آدمی جاتا ہے، پھر نفس مطمئنہ تک جاتا ہے. اب ان تینوں کیفیات کو ایکسپلین تو کیا ہے سب نے، لیکن اس کی بریف ڈیفینیشن کہیں نہیں ملتی انسان کو. یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ڈیفینیشن ہے اور ایک اس کو ایکسپلین کرنا ہے چیزوں کو. جیسے توکل ہے، توکل کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور توکل کو جس طرح ہم بیان کرتے ہیں وہ اصل میں ہم ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وٹ از توکل. نفس امارہ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نفس کی تینوں کیفیات کی جو ڈیفینیشن جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، میرے خیال میں وہ مختصر ترین ہے اور جامع ہے. انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا بلکہ اسے ڈیفائن کیا ہے. تو جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نفس امارہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسا نفس जो ख्वाहिशात से मगलूब हो जाए, शैतानी ख्वाहिशात से मगलूब हो जाए और उसे रजिस्ट न कर पाए, वो नफ्से अमारा है। और नफ्से लवामा को डिफाइन किया है जनाब हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि ऐसा नफ्स जो कमाल इताअत को तो नहीं पहुंचा लेकिन गलतियों कोताहियों और गुनाहों पर शर्मिंदा जरूर रहता है, वो नफ्से लवामा है। और नफ्से मुतमईना को डिफाइन किया है ऐसा नफ्स जो शैतानी ख्वाहिशात से लड़ते लड़ते उस पर फतेह याब हो जाए और उसका इज़्तिराब खत्म हो जाए, वो नफ्से मुतमईना है। मेरे ख्याल में ये डेफिनेशन नफ्स की तीनों कैफियात की बड़ी जामे और बड़ी मुख्तसर है और इससे इंसान को समझने में सहूलत हो जाती है। नेक्स्ट संडे इंशाअल्लाह ताला हम रूह और अक्ल पर बात करेंगे। तो ये सवालात के सिलसिला एक सवाल है कि क्या सलाहियत ज़र्फ और इस्तादाद न होने के बावजूद किसी शख्स को मुशाहदा या फतेह नसीब हो सकती है। इसमें ये तीन मुख्तलिफ हालतें एक सवाल में रखी हैं और वो तीनों मुख्तलिफ हैं। तो हमें इस सवाल के जवाब के लिए इन तीनों को अलग-अलग से डील करना होगा। सलाहियत तो हर इंसान में है, फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग अपनी सलाहियत को पॉलिश कर लेते हैं रियाजत के जरिए से, मुजाहिदे के जरिए से, वो डेवलप होती है सलाहियत और फिर उस सलाहियत से काम लेते हैं और वो अल्लाह की राह पर चलने लगते हैं। दूसरा जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ज़र्फ, ये एक ऐसी रिलेटिव टर्म है। एक तो उसकी बुनियाद इंसान में अगर मौजूद है ज़र्फ तो फिर अक्ल और इल्म और कोशिश, ये तीन चीजें अगर इंसान करे तो अपनी उस बुनियाद को ज़र्फ जो उसके अंदर मौजूद है उसको फर्दर डेवलप करता चला जाता है। लेकिन ज़र्फ का होना बड़ा जरूरी है। ये इतनी ब्रॉड बेस्ड टर्म है, हमें अक्सर एक तजर्बा होता है कि मैंने अगर ख्वाब में कोई ऐसी चीज देख ली जो बड़ी मुबारक है या नई है, कोई ख्वाब देखा मैंने जिसमें मुझे मैंने देखा कि मुझे कुछ अता किया जा रहा है, तो मैं बेचैन हो जाऊंगा कि मैं अपना वो ख्वाब लोगों को बताऊं। लेकिन अगर आदमी का जर्फ बड़ा है तो इस ख्वाब को पी जाएगा बंदा, और जितना उसको पी जाएगा उतनी ही आगे उसकी तरक्की और हो जाएगी। अगर मैंने कहीं जिक्र करते करते कोई चीज देख ली तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं लोगों को बताता फिरूंगा। अगर बहुत ही बड़े हौसले का सबूत दूंगा तो कम से कम जाके अपने मुर्शिद साहब से जरूर बता दूंगा। ये ज़र्फ की कमी है, तो इसको हम दूसरे लफ्जों में भी कहते हैं, सहार नहीं है हमारे अंदर। ये जर्फ आएगा तरबियत के जरिए से, आपके मुर्शद आपकी तरबियत करेंगे। जैसे बड़े शाह साहब किसी कीमत पर यह सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि उनको कोई ये कह दे कि सर आपने मुझे ये पढ़ने को बताया था। वो उनका तो कोई नुकसान नहीं था, सुन सकते थे, लेकिन जिसको वो सिखा रहे हैं उसकी तरबियत करने के लिए वो आगे से डांट देते थे, क्यों फिर मुझ पर एहसान करते हो, पढ़ मत पढ़ो छोड़ दो। वो डांट नहीं होती थी, वो दरहकी की तरबियत हो रही होती थी कि सख्ती से इसको रोका जाए यहीं पर ताकि फर्दर बातें न बताने लगे। ये कोई आदमी जिसको वो तालीम दे रहे हैं उसने अपना कोई मुशाहिदा बयान करने की कोशिश की तो बड़ी बुरी तरह डांट दिया, वो बयान नहीं करने देते थे। तो ये तरबियत थी। तो इंसान में ये ज़र्फ या सहार पैदा होनी चाहिए कि जो कुछ वो मुशाहिदा करे उसको वो अपने अंदर रख सके। इसी तरह हम लोग जाते हैं किसी के पास और जाके उससे कहते हैं कि हमें कुछ अता कर दीजिए, कोई तोहफा दे दीजिए। ये सवाबदीद आपके मुर्शद साहब की है जो आपको तालीम दे रहे हैं, जो आपकी तरबियत कर रहे हैं, कि वो कब ये देखते हैं कि आप इस काबिल हो गए कि आपको अगला सबक दे दिया जाए। ये नुक्ता बड़ी अच्छी तरह मुझे एक वली अल्लाह ने क्लियर किया। तो एक सबक जो मुर्शिद साहब ने दिया था पढ़ने को, मेरे ख्याल से शायद 42 साल से ज्यादा अरसा हो गया पढ़े जा रहे हैं, कभी मुर्शिद साहब से कहा ही नहीं कि साहब वो आपने मुझे बताया था तो कब तक पढ़ना है। ठीक है, जब रोकना होगा मना कर देंगे कि अब ये छोड़ दो, या जब वो समझेंगे कि और इसको देना है कुछ पढ़ने को तो दे देंगे। ये उनका फैसला है, फैसला सीखने वाले का नहीं है। ये सब चीजें तरबियत से आती हैं। इसीलिए इसी तरह एक और चीज है कि हम दुआ करवाने से बाज नहीं आते अपने मुर्शिद से। भाई वो मुर्शिद काहे के हैं? अगर मुझे कहना ही पड़ जाए कि मेरे लिए दुआ करें तो वो मुर्शिद कैसे हुए? और फिर ये है कि मैं तो उन साहब को मुर्शिद मानने को तैयार ही नहीं हूं जो अपने शागिर्द को उस मकाम तक नहीं ले जाएं जहां उसकी दिल से दुनिया की माल और दुनिया की मोहब्बत ना निकल जाए, दुनिया के माल की मोहब्बत या दुनिया की मोहब्बत ना निकल जाए। ये तो मुर्शिद पहला काम यही करते हैं, बशर्ते मुर्शिद हों सही। कहीं किसी की किस्मत खराब है, मुझ जैसे आदमी को पकड़ लिया तो वो बेचारा क्या सिखाएगा, खुद ही नहीं सीखा हुआ गरीब। तो मुर्शिद तो दिल से हुब्ब दुनिया निकालता है, तो अगर उसके शागिर्द ने उससे दुनिया की मोहब्बत ही की दुआ करते रहना है तो सिखाया क्या उन्होंने। और एक उसके अंदर बड़ी बारीक सी बात है कि मुर्शिद कोशिश करेंगे कि आप उनसे दुनिया की किसी दुआ का ना कहें, कि मुर्शिद आपको धकेलता है रब की तरफ, रब के पास जाओ, रब की इबादत करो, रब से मांगो, रब की दहलीज पर बैठो जाके, मेरे पास क्या लेने आती हो। तो वो धकेलता है कि रब की तरफ जाओ तुम, इसलिए कि सही जगह वही है, सही रास्ता वही है। बात ज़र्फ से चली थी, तो ज़र्फ डेवलप होगा सही तरबियत, बल्कि सही तालीम और तरबियत से, क्योंकि तालीम से इंसान का जहन खुलता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल होराइजन ब्रॉड होता है। तो जितना मेंटल होराइजन हमारा ब्रॉड होता चला जाएगा, हमारे अंदर ज़र्फ बढ़ेगा कि हम चीजों को एब्जॉर्ब करने, बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करेंगे अपने अंदर। तो मेंटल होराइजन का ब्रॉड होना बड़ा जरूरी है, और वो मेंटल होराइजन याद रखिए हमेशा ब्रॉड होता है तालीम से। तीसरा, इन्होंने इस्तादात का पूछा। इस्तादाद हर शख्स में मौजूद होती है, फर्क डिग्री का है। कुछ लोगों में कम इस्तादाद होती है, कुछ लोग ज्यादा इस्तादाद के मालिक होते हैं। ये जो अभी मैं जुमला कह रहा था कि ये फैसला आपके मुर्शिद साहब का है कि उन्होंने आपको क्या देना है, कब देना है, कितनी मकदार में देना है, ये फैसला आपके मुर्शिद का है, ये फैसला हमारा नहीं है। आपके मुर्शिद चूंकि साहिब इल्म है, वो आपको देखकर अंदाजा कर लेते हैं कि हमारी मेरी इस्तादाद क्या है, वो उस इस्तादाद के मुताबिक मैयत डोज में इल्म देंगे। क्योंकि एक बड़ा जबरदस्त एहतमाल रहता है कि अगर ज्यादा मकदार में एकदम से किसी को इल्म दे दिया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसके दो तीन नतीजे निकल आएंगे, या वो अपने दुनियावी फराइज को भूलकर इसी राह पे लग जाएगा। जो कि सुन्नत नहीं है। सुन्नत तो ये है कि एक हाथ में दीन, एक हाथ में दुनिया, और दोनों में कमाल हासिल किया जाए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी जिंदगी बड़ी भरपूर गुजारी है। मैं उस रेफरेंस से सुन्नत कह रहा हूं। दूसरा दूसरी कैफियत उसमें ये पैदा हो सकती है कि इल्म की ज्यादती की वजह से वो होशाहवास सही बेगाना हो जाए। तीसरी कैफियत ये हो सकती है कि इल्म का बोझ उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए और वो भाग जाए। तो जो वाकई साहिब इल्म हैं, जो वाकई मुर्शद हैं, वो बहुत मैयद डोज देते हैं इल्म की, जिसको दूसरा आदमी एब्जॉर्ब करता जाए साथ साथ और इल्म के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए। ये जो सवाल का अगला हिस्सा है कि इस्तादाद न होने के बावजूद किसी शख्स को मुशाहदा या फतह नसीब हो सकती है, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मुर्शद आपके फैसला कर लेंगे। मैंने यहां एक बार एक किस्सा सुनाया था कि बड़े शाह साहब के पास मुझसे ही किसी साहब ने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मिलवा दें, तो मैंने बड़े शाह साहब से अर्ज की कि इस तरह एक साहब है मेरे जानने वाले, वो आपसे मिलना चाहते हैं। फरमाया ले आओ। वो गए वहां, उसके बाद मैंने देखा कि वो बड़े शाह साहब के साथ साथ ही रहते थे हर वक्त, ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो एक दिन मैंने देखा कि वो कुछ बैठे हुए कैलकुलेशंस कर रहे हैं और शाह साहब उसको बता रहे हैं कि ये तुमने यहां गलती की, इसको यहां से यूं नहीं यूं करो। तो मैंने ये सोचा कि ये तो शाह साहब का स्टाइल ही नहीं है कि इस तरह से सिखाएं, ये तो बड़े सख्त किस्म के उस्ताद हैं कि उठाया उठा के दरिया में फेंक दिया कि लो अब तैरना सीखो, अगर तैर सको तो तैर लो वरना डूबते रहो। तो उनका रवैया ऐसा था। तो ये क्या, ये सिखा रहे हैं? फिर मैंने देखा इसी तरह, तो मेरे दिल में यह आया कि शाह साहब इनको बड़ी मेहनत से सिखा रहे हैं। तो फिर एक दिन देखा तो वो बड़ी दिलचस्पी से उनकी तालीम कर रहे थे। जब तीसरी बार मेरे दिल में ये ख्याल आया तो वो साहब जब उठ के चले गए तो शाह साहब ने मेरी तरफ रुख किया और फरमाने लगे कि मियां हम तो फकीर लोग हैं, हमारे पास जो आदमी जिस नियत से आता है हम वो उसको दे देते हैं। ये साहब मेरे पास आए थे दिल में ये नियत लेके कि मुझसे कुछ ऐसा इल्म सीख लें जिससे लोगों के सवालों के ये जवाब सही दे दिया करें और इनको इनकम हो जाया करें। तो मैंने इनको ये इल्म फलकियात का एक हिस्सा सिखा दिया। अब ये कैलकुलेशंस के जरिए से जवाब निकालेंगे, लोगों को दे देंगे, हर एक से ये 150 रुपए वसूल कर लेंगे। तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत देर पहले दिखा दी गई थी कि तुम्हारा हिस्सा है मेरे पास, लेकिन तुमने आने में बहुत देर की, तो जब आए तो जितना तुम्हारा हिस्सा था वो मैंने पहले दिन दे दिया तुम्हें। अब ये तुम्हारी अपनी हिम्मत है कि उस पर मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, या तुम वहीं के वहीं बैठे रह जाओ। तो हम तो जो जिस नियत से आता है उसको वो दे देते। ये बात बड़ी देर में जाके मुझे समझ आई कि वो कितनी बड़ी बात कही थी शाह साहब ने। तो ये जो आपने कहा कि बगैर सलाहियत ज़र्फ और इस्तादाद के मुशाहदा और फतुहात हासिल हो सकती हैं, अगर किसी में है नहीं ये तीनों चीजें तो मुर्शद देंगे ही क्यों इल्म उन्हें? हाँ, इबादत का सही तरीके सिखा देंगे ताकि सवाब मिलता रहे। इनका एक और सवाल है कि औलिया अल्लाह में से किस दर्जे पर फाइज वली अल्लाह को सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज हासिल होता है, क्या गौस को? ये दो दर ऐसे हैं जहां ये नहीं देखा जाता कि मांगने वाले की झोली कितनी बड़ी है, मांगने वाले का जर्फ क्या है। एक रब का दर है और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब भी अता फरमाता है तो बेहद हिसाब अता करता है, बगैर हिसाब के अता करता है। वह अता करते वक्त ये नहीं देखता कि जिसको मैं दे रहा हूं उसका जर्फ कितना बड़ा है। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, हम मुर्शिद की बात कर रहे थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तो नजरे इनायत का मामला है, वहां अपने पराये का, अच्छे बुरे का, छोटे बड़े का कोई किस्सा नहीं है। वहां तो रहमत ही रहमत है। जिस आदमी ने भी जाके दस्तक दे दी दरवाजे पे और सवाल दस्ते सवाल दराज कर दिया, वो लाद लदा के भेज दिया गया। वहां तो रहमते हैं और ये मामला सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत का है, इसमें इसको कोई दखल नहीं है कि कोई गौस के मकाम पर फाइज है या शहीद के मकाम पर फाइज है या कुतब है या वली अल्लाह है या इमरान है अख्यार है, क्या है वो? वहां तो नजर इनायत है, जिधर को उठ गई वो नवाजा गया बंदा। इनका एक सवाल है कि मुशाहदाए हक में गुम गौस अपने फराइज कैसे सरंजाम देता है? अब मुझे नहीं मालूम कि ये सवाल जिन सामने किया है उनके जहन में क्या है कि जो गौस है वो क्या हर वक्त आलमे इस्तगराक में रहता है? क्योंकि जब वह हालत इस्तगराक में होगा तो ही वो दुनिया से कटा हुआ होता है, वरना वो अपने फराइज पूरी तंदही से उस इल्म अकल और इस्तात, इस्तादाद नहीं इस्तात से भरपूर काम लेते हुए नहायत दिलजमई से अपने फराइज को अदा करता है। वो मैंने यहां शायद दो तीन संडे पहले अर्ज किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 24 घंटे उन्हें तकसीम कर रखा था तीन हिस्सों में। एक दिन का एक हिस्सा अमूरे मुमलकत और वफूद से मिलने के लिए था, सहाबा कराम से डील करने के लिए था, 8 घंटे का एक हिस्सा, और 8 घंटे का अगला हिस्सा अपनी फैमिली लाइफ के लिए था। और दिन का तीसरा 8 घंटे का हिस्सा आराम और इबादत के लिए था। जो शख्स गौस के मकाम पर पहुंचा है वो पहुंचा ही वहां इसलिए है कि वो कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा है। तो जाहिर है कि वो सुन्नत पर अमल करेगा और ये तमाम अपने अमूर सरंजाम देगा इसी तकसीम के को सामने रख के। तो ये हो नहीं सकता कि कोई वली अल्लाह गौस के मकाम तक जा पहुंचे और फिर भी उसके फराइज में कहीं ओवरलैपिंग होती हो के जो टाइम उसका दुनियावी अमूर सरंजाम देने का है वो ओवरलैप कर जाए उसके आराम से या ओवरलैप कर जाए उसकी इबादात से। इसी तरह उसके जो फैमिली के लिए उसने टाइम मुख्तस किया हुआ है वो ओवरलैप कर जाए हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो फकीर है तो हम इसको किसी वक्त भी जाके डिस्टर्ब कर सकते हैं इसको किसी वक्त भी जाके इसके घर पे इसकी ऑफिस में इसकी दुकान पर इसे मिल लें। वो मिल तो लेगा आपसे लेकिन दिल में इसके योगा के मेरे मामूलात में इसने खलल डाल दिया है। हम बचपन में एक चीज सुना करते थे कि कोशिश करो कि फकीर के दिल में उतर जाओ और इस बात से बहुत एहतियात करो कि कोई फकीर तुमसे चिढ़ ना जाए। तो उस वक्त उस उम्र में तो समझ नहीं आती थी बातें ये बाद में समझ में आई कि बड़े शाह साहब के पास अगर मुझे जाना है तो मैं उनके मामूलात को पहले समझ लूंगा कि उनके मामूलात क्या हैं। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उनके उन मामूलात का एहतराम करूं और सिर्फ उस वक्त उनके पास जाऊं जब जो वक्त उन्होंने मुख्तस किया हुआ है लोगों से मिलने के लिए ताकि मैं मुखल ना हूं उनकी मामूलात में। अजीब बात यह है कि ये तो रूहानियत की हम बात कर रहे हैं तो जिस जमाने में हम पढ़ रहे थे तो मार्केटिंग के सब्जेक्ट पढ़ाते हुए हमें जो तालीम दी गई थी वो ये थी कि उन दिनों जबकि मैं बात कर रहा हूं वो तो बड़े पुराने किस्से हैं कि जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त छुट्टी वीकडेज की यूरोप में एक ही दिन की होती थी संडे। तो हमें पढ़ाया ही जा रहा था कि जब तुम्हारा जहां काम है अब उस अफसर से मिलने जा रहे हो तो एक एहतियात ये करो कि सैटरडे को 12 बजे के बाद उससे न मिलने जाओ इसलिए कि 2 बजे उसे ऑफ होना है तो 12 बजे के बाद से वो हॉलीडे मूड में चला गया है। अब आप उसके लिए कुछ ज्यादा वेलकम विजिटर नहीं रहेंगे वो चढ़ जाएगा आपसे तो 12 बजे के बाद उसके पास मत जाओ। इसी तरह मंडे मॉर्निंग वो वीकेंड के बाद आया है उसने अपने पूरे वीक का प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए तो सुबह 10 बजे से पहले उसके ऑफिस में मत जाओ क्योंकि वो पूरे वीक की प्लानिंग में मेंटली बिजी है तो आपको वो दिल से वेलकम नहीं करेगा। इसी तरह जब किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो ना तो आप आंधी और तूफान की तरह उसके कमरे में दाखिल हों और ना सो हों। जब आप अपना विजिटिंग कार्ड उसको पेश करते हैं तो उसका बाकायदा एक तरीका सिखाया गया था कि विजिटिंग कार्ड और विजिटिंग कार्ड का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसको किस तरतीब से उस पर प्रिंटिंग आनी चाहिए, उसका एक स्पेसिमेन पढ़ाया गया था कि आपका विजिटिंग कार्ड ऐसा हो कि सबसे पहले जिस अदारे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस अदारे के नाम विजिबल हो उसे, उसके बाद आपका नाम विजिबल हो और एंड पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर। और जब आप उसको विजिटिंग कार्ड पेश करें तो उसको इस कोने से पकड़कर इस तरह पेश करें कि जब तक आप पेश कर रहे हैं उस स्प्लिट सेकंड में वो नजर दौड़ा सके कि किस अदारे से हैं और क्या नाम है आपका। इसी तरह तरीका सिखाया जा रहा था कि जवाब में जब वो आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे तो आपने रिसीव कैसे करना है। ये दुनियावी चीजें, लेकिन रूहानियत में इससे ज्यादा पाबंदियां हैं। तो हमें जिस फकीर से भी हमारा ताल्लुक है, उन्हें हमने मुर्शिद माना है या उनसे हम तालीम लेना चाहते हैं, तो दो चीजें अगर अब उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो हमारे यहां एक चीज सिखाते हैं सर्विस के मामले में कि जब हम किसी को खाने पर घर इनवाइट करते हैं तो एक मखसूस ड्रिल है जिसमें से हम गुजरते हैं कि हम अपने तौर पर उसके स्टाफ से ये चेक कर लेते हैं, उसके करीबी लोगों से, कि इसको क्या पसंद है, क्या शौक से खाते हैं जिन साहब को हमने डिनर पर बुलाया है। इसी तरह अगर वो ओवरनाइट स्टे कर रहा है तो पिलो किस तरह का इस्तेमाल करता है, इसको मैट्रेस कैसे मैट्रेस पर सोने की आदत है, सोते वक्त ये दूध वगैरह पीने का आदि तो नहीं है, या सुबह बेड टी कितने बजे इसे चाहिए होती है, कैसी चाय पीता है बंदा, खाने में ये किस तरह के खाने इस्तेमाल करता है, स्पाइसी हैं, मीडियम है, माइल्ड है, वो सारी हम इंफॉर्मेशन पहले गैदर कर लेते हैं तो उसके डिनर उसके मुताबिक तैयार किया जाता है। ये आदाब हैं दुनियावी उसमें। इसी तरह जब हम किसी फकीर के पास अगर हम जाएं तो बजाय इसके कि हम फौरन उनसे इल्म लेने के किस्से में पड़ जाएं, हमें ये चाहिए कि हम पहले स्टडी कर लें कि उनकी नेचर क्या है। क्योंकि वक्त आपका हो गया, मैं बल्कि 5 मिनट एक्स्ट्रा ले गया, तो इंशाल्लाह इस बात को नेक्स्ट संडे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये बात बड़ी हेल्पफुल होगी हम सब के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी, कि हम किसी फकीर से इल्म किस तरह हासिल कर पाएंगे आसानी से। नेक्स्ट संडे तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।